आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा हम लोग इस बात को सूक्ष्मता से विचार कर लें, कलेक्टिव ईगो की जो बात हुई। ठीक वैसे जैसे किसी भी व्यक्ति को इंडिविजुअलाइज करने के लिए इंडिविजुअल ईगो की जरूरत होती है, माता जी ऐसा बताती हैं। बाद में जब वो इंडिविजुअलाइज हो जाती है सत्ता, तब वो उसको समर्पित करती है। उसके पहले उसके पास समर्पण करने को कुछ है नहीं, क्योंकि वो तो केवल एक प्ले ऑफ फोर्सेस का एक टॉय है। तो उसी प्रकार से व्यक्ति को परस्परता और एक लार्जर ट्रूथ कि मेरे से परे भी कोई चीज है, कोई सत्य है, उसका आभास कराने के लिए किंडरगार्टन से लेकर पीएचडी लेवल तक प्रकृति ने कई सारे खांचे बनाए हैं। पहला जो खांचा है वो परिवार का खांचा है, वो एक फर्स्ट ग्रुप यूनिट है जिसमें व्यक्ति सीखता है कि मैं अकेला नहीं हूं और ये संसार केवल मेरे भोग के लिए नहीं है, और भी लोग हैं जिनके साथ मुझे चीजों को बांटना है, शेयर करना है। और उसके बाद फिर बहुत सारे यूनिट बनते जाते हैं, मोहल्ला, गांव, फिर स्टेट, भाषा, संप्रदाय इत्यादि बहुत सारे यूनिट बनते हैं। फिर एक दूसरा यूनिट जो इंपॉर्टेंट है, पहला फैमिली मिनिमम इंपॉर्टेंस का यूनिट ये है। फिर उसके बाद बहुत सारे अस्थाई यूनिट बनते हैं जो चेंज होते रहते हैं। लेकिन एक दूसरा यूनिट जो बनाया है भगवान ने अपनी प्रतिष्ठा, अपने को स्वयं को प्रतिष्ठित करने के लिए, वो है राष्ट्र। नेक्स्ट जो चीज रुकती है वो राष्ट्र पर रुकती है। और तीसरा जो है वो विश्व, विश्व एकत्व का बोध। ये तीन यूनिट शायद रहेंगे, शायद नहीं लगभग रहेंगे, क्योंकि राष्ट्र का अपना एक सत्य है और परिवार का ये सत्य है कि प्रारंभ में जब तक सुप्रामेंटल बीइंग एक सुप्रामेंटल क्रिएशन में नहीं आता तब तक उसकी एक आवश्यकता रहेगी, पहला जो पोषण होता है। लेकिन बीच के जो यूनिट हैं जिसमें हम अपनी कलेक्टिव ईगो को फंसा लेते हैं वे समाप्त हो जाएंगे और वो धीरे धीरे उस दिशा में जा रहे हैं, रूडिमेंट्री फॉर्म में हैं, जा रहे हैं। और जिन लोगों को ये विचार बहुत रिवॉल्यूशनरी लग रहा हो उनको कान्हा की वाणी पर ध्यान देना चाहिए। यही संशय अर्जुन के मन में था, मेरा कुल, उनका संशय यही था, मेरा कुल, मेरे लोग, मेरा परिवार, वह जिसे मेरा राष्ट्र तो नहीं था तब, लेकिन जो भी वो भूखंड था। और श्री कृष्ण उसी समय स्पष्ट कर देते हैं उनको कि इससे बड़ा एक सत्य है और ये सब चीजें अगर उस सत्य को अभिव्यक्त करती हैं तो ठीक है, पर अगर वो अभिव्यक्त नहीं करती हैं तो वो एक सभ्यता समाज जर्जर और दूषित हो चुका है और उसको खंड करना ही सही है। वहीं से अर्जुन की पूरी समस्या शुरू होती है, कुल क्षय, कुल दोष इत्यादि इत्यादि मिक्सचर हो जाएगा। तब फेसबुक नहीं था लेकिन यही समस्या अर्जुन कहते हैं, मिक्सचर हो जाएगा, हमारे कुल की स्त्रियां दूसरे कुल में उनका ब्याह होगा। हालांकि श्री कृष्ण ने अपने जीवन में उदाहरण दिया था, स्वयं जो सुभद्रा का विवाह है और उत्तरा का विवाह है, उन्होंने अपने जीवन में इस चीज का उदाहरण दिया और कई लोग इस चीज को नहीं समझ पाए थे उस समय भी। तो अगर हम सूक्ष्मता से देखें तो श्री अरविंद उसी बात की बड़े व्यापक रूप से पुष्टि कर रहे हैं जो श्री कृष्ण ने गीता के प्रारंभ में एक संकेत के रूप में कही है। पूरा महाभारत इसलिए है कि कुल से बढ़कर कोई सत्य है उसको हमें एम्ब्रेस करना चाहिए। तो ये जो बीच की जो अवस्थाएं थी जिसमें हम थोड़ा थोड़ा अपना एक्सपेंड करते हैं और केवल हम अकेले नहीं हैं, हमसे अन्य भी लोग जुड़े हुए हैं, इसके बारे में सोचते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्रारंभ में व्यक्ति घर के, मेरा घर साफ रहे, ये उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, कई लोग वहां रुक जाते हैं, ये समस्या है। पर अगर ये ट्रेनिंग को वो अप्लाई करे कि हमने अपने घर में साफ सुथरा रहना सीखा है तो हम मोहल्ले को भी साफ करें, हम राष्ट्र को भी साफ करें, क्यों? क्योंकि जन्म से हमने अपने घर में स्वच्छ रहना सीखा है, तब उसका लाभ है। और अगर हम ये सोचे नहीं हमारा घर हम साफ रखेंगे बाकी से कुछ मतलब नहीं, तो वही ईगो का मोल्ड हो जाता है जो वहीं पर सब चीज को समाप्त कर देता है। तो इस सेंस में हमें इस कलेक्टिव ईगो की बात को लेना चाहिए। कई सुंदर चीजें जो हम लोग सीखते हैं, जैसे अभी बात हो रही थी मालवा की चाय की, कई चीजें जो बड़ी सुंदर हैं और उनको रखना चाहिए, लेकिन ईगो के रूप में नहीं। वो चीज सुंदर है इसलिए, इट डजंट मैटर कहां की है, जो भी सत्य है जो भी सुंदर है उसको निश्चित रूप से रखना चाहिए, और हम चाहें भी तो वो नष्ट नहीं होगा क्योंकि वो सुंदर है, सत्य से जुड़ा है। लेकिन बहुत सी चीजें उसके साथ चिपकी होती हैं जो वास्तव में विकृतियां हैं, और उनको हटा देना चाहिए। इस तरह से हम ईगो, कलेक्टिव ईगो को हटाया जाता है, वैसे ही जैसे इंडिविजुअल ईगो की मोल्ड से कई चीजें हटाई जाती हैं। अब श्री अरविंद तीन प्रकार के समाज का वर्णन करते हैं जो अब तक प्रकट हुए हैं। थ्री मेन डिविजन्स ऑफ द ऑर्डिनरी ह्यूमन सोसाइटी आर नोटिसेबल। साधारण मानव समाज अब तक जो हुए हैं तीन प्रकार के हुए हैं, जैसे तीन प्रकार की ईगो होती हैं, वैसी तीन प्रकार की प्रकृति, निम्न प्रकृति की गतियां होती हैं, वैसी तीन प्रकार के समाज हैं, सत्विक, राजसिक और तामसिक। द फर्स्ट इज द वेल बिल्ट चैरियट, पॉलिश्ड, शाइनिंग, क्लीन एंड कंफर्टेबल, फैशन बाय स्किल्ड आर्टिसंस, ड्रॉन बाय स्ट्रॉन्ग वेल ट्रेन्ड हॉर्सेस। इट गोज फॉरवर्ड कॉशियसली एट एन ईजी पेस विदाउट एनी हेस्ट अलॉन्ग ए गुड रोड। मर्सिडीज बेंज कंफर्टेबली जा रही है, बाहर से भी पॉलिश्ड है, शॉक एब्जॉर्बर बहुत अच्छे हैं, जो अंदर बैठे हैं बहुत कंफर्ट फील कर रहा है, बहुत तेज आप नॉर्मल उसमें नहीं, ऑफ कोर्स फ्री रोड में यू कैन ड्राइव इट, तो वो बड़ी गाड़ी है जा रही है, तो ये एक चैरियट है जो वेल ट्रेन्ड हॉर्सेस से ड्राइव किया जा रहा है, अच्छा चैरियट है। और इसका ओनर कौन है? सात्विक ईगो इज इट्स ओनर पैसेंजर। दिस चैरियट गोज राउंड, ये बड़ी सुंदर, अब आगे जो शेरविन कह रहे हैं बड़ा सुंदर एलेगरी है। दिस चैरियट गोज राउंड द टेम्पल ऑफ गॉड सिचुएटेड ऑन ए हाई रीजन अबव इट। अब आप किसी भी मंदिर में, अब तो चीजें बदल रही हैं थोड़ी बहुत, लेकिन आप देखिए कि एक मंदिर पहाड़ों पर होते हैं, केदारनाथ आप देख लें तो आप एक लिमिट तक, या गंगोत्री, आप एक लिमिट तक तो आप मोटरेबल रोड है, लेकिन वो आपको अंत तक नहीं ले जाएगा। देखिए कितना सुंदर संकेत है, एक समय आएगा जब आपको वहां से उतरना है, इवन सात्विक ईगो को डिस्कार्ड करना है। सात्विक ईगो आपको एक लिमिट तक ले जाएगी, लेकिन ये कि मैं वर्चुअस हूं, मैं राइटियस हूं, मैं अच्छा इंसान हूं, मैं कर्तव्य परायण हूं, यही भगवान को मिलने में बाधक हो जाती है। श्री अरविंद का एक बड़ा सुंदर एक एफोरिज्म है, और वो गोपियों के कहानी से है कि गोपियों का वस्त्र हरण जो श्री कृष्ण करते हैं, तो श्री अरविंद कहते हैं जब भगवान आए और उन्होंने मेरे पाप से मैले कुचैले वस्त्र उतार दिए, तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा अपने आप को सुखद अनुभूति हुई, क्योंकि उन्होंने पाप के वस्त्र उतार दिए। लेकिन जब उन्होंने मेरे से पुण्य के वस्त्र खींचने शुरू किए, द रोब ऑफ वर्चू, तब मैं हिचकिचाया, शर्म आने लगी, इसके बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि पुण्य ही तो मेरी पहचान है। तो जब पुण्य हमारी पहचान बन जाती है तो परम कैसे आएंगे जो पाप पुण्य के परे हैं, सर्वभोक्तारम है। तो यहां पर सात्विक ईगो एक लिमिट तक व्यक्ति को ले जा सकती है, लेकिन इसीलिए माँ एक जगह और कहती है कि एक पापी को कई बार भगवान की ओर मोड़ना सरल होता है, लेकिन एक बहुत पुण्यात्मा, वर्चुअस, सेल्फ राइटियस मैन को मोड़ना कठिन होता है। वो कहते हैं मैं तो सब सही कर रहा हूं, मुझे भगवान की क्या जरूरत है, मैं तो वही तो कर रहा हूं। आप देखिए बहुत कठिन होगा उनको कहना कि नहीं, गीता में कुछ और लिखा है, नहीं नहीं मैं अपने कर्तव्य पूरे करता हूं, मैं कुछ गलत काम नहीं करता हूं, जो कि कुछ गीता में लिखा है मुझे मालूम है, मैं वही जीवन जी रहा हूं। वेरी डिफिकल्ट, इतना स्ट्रांग ईगो होगी, जो पाप कर रहा है वो कहेगा हाँ मुझे पता है क्या करूं, भगवान की दया मेरे ऊपर भी आएगी, हाँ आएगी, अच्छा चलो मैं भगवान का नाम भज लेता हूं, क्योंकि उसको मालूम है। पर जो वर्चुअस में है वो दूसरों को हे दृष्टि से, मैं देखो पुण्यात्मा हूं और कुछ नहीं, इसी का अहंकार है, वो ये पापी लोग, और उसी अहंकार में वो फंसा हुआ है, तो एक सीमा तक ले जाती है, उसके आगे नहीं ले जा पाएगी। तो गाड़ी छोड़ करके आगे हमको पैदल या कंडी में जो भी रास्ता तय करना पड़ता है, तो यहां पर इट गोज फॉरवर्ड कॉशियसली. द सात्विक ईगो इज इट्स ओनर पैसेंजर. दिस चेरियट गोज राउंड द टेम्पल ऑफ गॉड सिचुएटेड ऑन ए हाई रीजन अबव इट. अनेबल टू गो वेरी क्लोज टू द हाई ग्राउंड इट सर्किल्स इट एस इट एट ए डिस्टेंस. परिक्रमा लगा रहा है उसके चारों तरफ. वो समझ नहीं रहा है उस सत्य को. उसने पकड़ लिया भगवान प्रेम में है, करुणा में है, अतः हमें सबसे प्रेम करना चाहिए. वो ये नहीं जान रहा कि भगवान का प्रेम महाभारत भी कर सकता है. वो नहीं समझ पा रहा. वो मानव प्रेम को ईश्वर का प्रेम समझ रहा है. सात्विकी को ऐसी होती है, सर्किल्स अराउंड. वो ग्लिम्स देख रहा है. भगवान ने कहा है यूनिटी होनी चाहिए, तो कहता है चलो देखो हमको आपस में भाईचारा होना चाहिए. यूनिटी, वो क्या यूनिटी है सत्य पर आधारित, वो नहीं समझ पाता है क्योंकि वो टेम्पल में नहीं प्रवेश कर रहा है, बाहर ही चक्कर लगा रहा है. वे सारे सत्य मानव सात्विक ईगो की भूमि पर उतर कर मानसिक आदर्श बन जाते हैं. और मानसिक आदर्श बिना आध्यात्मिक सत्य के, बिना आध्यात्मिक शक्ति के रियलाइज नहीं होंगे. और अगर रियलाइज होंगे तो उसका विकृत रूप होंगे, मास्करेडिंग ट्रूथ. एक बहुत बड़ी समस्या होती है आदर्शवादी लोगों के लिए. वो भगवान का खेल कभी नहीं समझ पाते क्योंकि वो सोचते हैं भगवान तो कहते हैं कि सबसे प्रेम करता है जी, प्रेम करता है तो ये क्या कर रहा है. गांधारी ने यही तो पूछा था ना, देखिए कितनी हर तरह से आदर्श नारी थी. कहती ये कैसा भगवान है, सब मेरे बच्चों को मार डाला. दया करुणा कम से कम एक को तो छोड़ देते, दुर्योधन ने तो विकर्ण को ही छोड़ देते, सबको मार डाला. ये भगवान है, कहते हैं कि श्री कृष्ण बड़े प्रेम में है. अब एक क्षण को देखिए उनकी दृष्टि से, आदर्श की दृष्टि से. तो भगवान जब शब्द यूज करते हैं प्रेम, करुणा, ज्ञान, इसका अर्थ बिल्कुल भिन्न है. हमारे अंदर उसका जो रिफ्लेक्टेड मीनिंग है वो बिल्कुल अलग है. तो सात्विक ईगो हमको सर्किल कराती है टेम्पल के, लेकिन अंदर नहीं ले जाती. क्यों? अंदर जाएंगे तो सबसे पहले वो सात्विक ईगो और एक रूप में आएगी, पंडे के रूप में. लोग बहुत बार मंदिर जाते हैं, पंडे से मिलने जाते हैं. क्यों? वो आपको राहु केतु बता करके आपकी दशा दूर कर देगा. भगवान बेचारा तो लास्ट में मत्था टेक दिया, लेकिन असली काम तो पंडा करेगा. बड़ी भयानक चीज है पंडा. पंडा नाम का जो जीव है बड़ा भयानक है. जितना पास जाएंगे भगवान से उतना दूर होते जाएंगे. वो कहेगा आपके और भगवान के बीच बहुत बड़ी दूरी है, और उसको दर किनारे करेंगे तो भगवान एकदम सामने खड़े मुस्कुरा रहे है ना. जैसे डॉक्टर, पंडा, ये सब एक कैटेगरी में आते हैं, वकील. नए जगत में ये सब नहीं रहेंगे. वकील के पास जाइए आप सुलह कराने, झगड़ा और बढ़ता जाएगा, विकराल होता जाएगा. वो सुलह क्यों करवाए आफ्टर ऑल, उसको तो अपने बच्चों को पढ़ाना है. जब बच्चा बीए कंप्लीट कर लेगा तो कहेगा आप देखो ऐसा करो, सेटलमेंट कर लो. ये चीज पहले भी हो सकती थी. तो ये डॉक्टर के पास जाइए, छोटी सी चीज कितनी विकराल, तरह तरह के डर भय आके. वो डॉक्टर भी भयभीत है, वो क्या करे, उसने यही पढ़ा है इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भयभीत आदमी है. और पंडा तो है ही, मेरे बिना घनश्याम नहीं, मैं ही मैं हूं. तो ये तो सात्विक ईगो इस तरह की है. इफ एनी वन वॉन्ट्स टू गो अप द रूल, देखिए कितनी सुंदर लाइन है. इफ एनी वन वॉन्ट्स टू गो अप द रूल इज टू गेट डाउन फ्रॉम द चेरियट एंड क्लाइंब ऑन फुट. भगवान के मंदिर में सात्विक अहंकार के साथ नहीं जा सकते. मैं अच्छा हूं, मैं राइटियस हूं, मैं तो वो सब कर रहा हूं जो गीता में लिखा है. तो भगवान कहेंगे जरूरत नहीं है, तुम वहीं रहो. नाम नहीं लूंगा, कोई व्यक्ति आए थे माता जी के पास, पूरा उन्होंने बताया मैं ऐसा कर रहा हूं वैसा कर रहा हूं, ये सब बताया. नाम लेने से आप सब बहुत शायद शॉक्ड भी हो सकते हैं. सब सुना माता जी ने. फिर माता जी से कहा अब मेरे लिए आप कोई और गाइडेंस. माँ कहती नहीं नहीं तुम जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो. ये माँ का इट्स सो ब्यूटीफुल. जब आप उसको पढ़ेंगे ना तो वो एट फर्स्ट स्पष्ट नहीं होता. माँ कहती नहीं नहीं जो तुम कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, तुम इसमें खुश हो यही करो, दिस वेरी गुड. क्योंकि वो तैयार नहीं है. वो कह रहा है गाइडेंस, लेकिन उसने सब अपना मैं ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं ऐसा हूं वैसा हूं. माने का बहुत अच्छी बात है, यू आर डूइंग You are doing fine, continue doing what you are doing. A very profound interview of the mother. अगर आप सरफेस पे देखें तो लगता है माँ ने स्वीकृति दी है. स्वीकृति दी है, परंतु तुम जहां हो अभी तुम वहीं अच्छे हो, अभी तुम तैयार नहीं हो इसके आगे. माँ ने उन्हें योग नहीं दिया, कुछ और नहीं बताया, बस कहा कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, वेरी गुड. सात्विक वही इज लाइक दैट, बहुत अच्छी है, लेकिन वो प्रवेश सत्य में नहीं कर पा रही. रूल है उसके लिए, आपको सब छोड़ना पड़ता है, जूते छोड़ने पड़ते हैं. यानी आपकी जो मान मर्यादा, कई लोगों की मान मर्यादा जूतों में ही होती है, तो आप कहीं चले जाइए सबसे पहले उनकी निगाह आपकी चप्पल पर जाती है, आपने कौन सी चप्पल पहनी है. तो बर्ट्रैंड रसेल तो ऐसे कहते, चप्पल देख रहे हो, यहां भी तो देखो. जैसे गए ना वो एक पार्टी में गए, तो वहां पर उनके होस्ट ने कहा, देखिए आप आ रहे हैं बहुत प्रतिष्ठित है, लेकिन जरा सूट उट अच्छा पहन के आइएगा. पहुंच गए तो वहां जाके उन्होंने आइसक्रीम लेके अपने सूट पे डालनी शुरू कर दी. कहा ये क्या करें, आपको आइसक्रीम खानी नहीं आती? कि नहीं, मैं सूट को खिला रहा हूं, यहां मेरी थोड़ी सूट की पहचान है. तो सात्विक ईगो भी वो कोट होता है अहंकार में, मैं बड़ा अच्छा आदमी, ये लोग अज्ञान वाले लोग, मैंने सब शास्त्र पढ़े हैं. ये भी एक सात्विक ईगो का एक लक्षण होता है, मैंने सब पढ़ा है जी, मुझे कोई जरूरत नहीं. और आगे तो भगवान कहेगा, ठीक है तुम इतने भरे हो कि तुम्हारे अंदर डालूं क्या, मैं जगह ही नहीं है. तो रूल है, यू हैव टू गेट डाउन, वॉक ऑन फुट. क्या अद्भुत रूल है, स्टोरी है बड़ी सुंदर. निजामुद्दीन के पास कोई गया, उनका एक डिसाइपल, और कहता है कि मुझे मेरी बेटी की शादी हो रही है, आप कुछ हेल्प कर सकते हैं? कहते हैं निजामुद्दीन, हेल्प मैं क्या करूं, फकीर हूं, तो मेरी जूती ले ले, यही मेरे पास है, ले जा. तो लेते हैं, पर कहते हैं इतने मिराकुलस, वो तो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, क्या मुझे जूती दे दी. ये सब विचार से वो जा रहा है. उधर से आ रहे हैं अमीर खुसरो, अमीर खुसरो आ रहे हैं अपने सारे राजपाट असबाब के साथ निजामुद्दीन से मिलने. सुन रखा है कि बहुत बड़े संत हैं, फकीर हैं. तो दोनों क्रॉस करते हैं, वो कहते हैं तुम कहाँ से आ रहे हो? तो कहा हम निजामुद्दीन के पास से आ रहे हैं. अच्छा, कहाँ है, कितनी दूर है? वो सब बताते हैं उनको कहाँ पर है. कहते हैं बहुत अच्छा, तो तुम ये हाथ में क्या रखे हो? तो कहता है ये तो हजरत जी की जूती है, लेके जा रहा हूँ, बड़े दुखी मन से. तो कहते तुम मुझे दोगे, मैं तुम्हारी कुछ इसके रिटर्न में कुछ दे सकता हूँ. तो सकपका गया. तो उसने पूछा कि आप ले सकते हैं, क्या देने की बात, हाँ मुझे जरूरत तो है. तो कहते ये सारा जो मैं ले जा रहा हूँ अपने साथ, साजो सामान, इसको अगर दे दूँ तो ये जूती दे दोगे मुझे? बड़ी टचिंग स्टोरी है, गुरु भक्ति की भी है और इसकी स्टोरी है. तो दे देता है. अब अमीर खुसरो निजामुद्दीन के दरबार में पहुंचते, जूती को सिर पे रख के और जाके हजरत के चरणों में रख देते हैं. कहते हैं हजरत आपकी जूती. तो वो तो सब जानते हो, मुस्कुरा के कहते हैं कितने की मिली? तो अमीर खुसरो कहते हैं बहुत सस्ती, बहुत सस्ती. तो ये वही चीज है कि सब छोड़ना पड़ता है, यू हैव टू गो ऑन फुट. सब तरह की ईगो, मैं मिनिस्टर हूं, बहुत बड़े तो मिनिस्टर थे, मैं धनी हूं, मैं ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं, ये सब चीजें छोड़नी पड़ती हैं. सब प्रकार के ईगो, और सबसे भयंकर होता है सात्विक ईगो. पंडित हूं मैं, सब पढ़ा है मैंने, ये सब यू हैव टू लीव. एक और बाद में कभी अगर अवसर हुआ कोई इंटरनेट से निकाल सके, एक इनकी स्टोरी है, इनकी एक पोयम है सुब्रमण्यम भारती की, कन्नन माय डिसाइपल. कन्नन श्री कृष्ण को कहते हैं, कन्नन माय डिसाइपल. अब देखिए, कहते हैं कि एक बार कृष्ण को मेरे स्टूडेंट बन के आए, और उनकी मम्मी कहती है बड़ा नटखट है, बिल्कुल बात नहीं सुनता, तुम ही इसको ठीक कर सकते हो.